आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। अनुमान के अनुसार रबी मौसम में प्याज सहित अन्य फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार मूल्यों में और गिरावट आने की संभावना है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2,10,000 करोड़ डॉलर था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस मामले में भारत अब अमरीका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से नकदी बरामदगी के बारे में पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट जारी की है। 25 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में होली की रात न्यायाधीश वर्मा के घर पर की गई अग्निशमन कार्रवाई के वीडियो और फोटोग्राफ्स भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने न्यायाधीश वर्मा का जवाब भी जारी किया है। अपने उत्तर में न्यायाधीश वर्मा ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी और जहां कथित तौर पर नकद राशि पाई गई थी वो मुख्य भवन नहीं बल्कि एक बाहरी कमरा था जहां न्यायाधीश और उनका परिवार नहीं रहता। रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश वर्मा ने कहा कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी स्टोर रूम में नकद राशि नहीं देखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कथित नकद राशि उनकी नहीं थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने यह जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें आधिकारिक संवाद भी शामिल हैं। इनमें कहा गया है कि भारतीय मुद्रा के 4 से 5 अधजले ढेर मिले थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पहले ही न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। सीजेआई खन्ना ने न्यायाधीश वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने का निर्देश भी जारी किया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। श्री शुक्ल पिछले 50 साल से साहित्य कार्य में लगे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की हिंदी के बेहतरीन उपन्यासों में से माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू के अभिनव थिएटर में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और रचनात्मक पेशेवरों को एक मंच प्रदान करना है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। यह लघु फिल्म महोत्सव न केवल उभरती प्रतिभाओं का समर्थन करेगा बल्कि सिनेमा के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देगा। कृतज्ञ राष्ट्र देश के 3 महान बलिदानियों और स्वाधीनता सेनानियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीनों वीर सपूतों को आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। इन क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने कहा है कि संगठन किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने और वहां से सुरक्षित वापस लाने के अभियान पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का वर्ष 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा। कोलकाता में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के आरंभिक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं चेन्नई में दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तुर्की के अंताल्या में भारत की प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।